का परिणाम भोगना पड़ता है। उसी सभा के अंदर अब रावण झूठ बोलते हुए बोलता है कि मैंने सीता को बहुत डराया धमकाया और सीता को मैंने शोक संतप्त किया, तो सीता ने कहा कि एक साल के बाद मैं तुमको स्वीकार कर लूंगी। सीता ने ये कभी नहीं कहा, बिल्कुल झूठ बोलता है। सातु संवत सरम कालम माम अयाचत भामिनी, उस सुंदरी सीता ने मुझसे एक साल का समय मांगा और कहा कि देखो महाराज, आप एक साल तक मुझे कुछ मत कहना, एक साल के बाद मैं आपकी रानी हो जाऊंगी। ऐसा एक तरफ तो मुझे बोलती है और दूसरी तरफ वो हर दिन राम का ही चिंतन करती रहती है। और मैंने भी भाई सीता के लिए प्रतिज्ञा की है कि भाई कुछ भी हो मुझे तो सीता प्राप्त ही करनी है, अपनी बनानी ही है, चाहे कुछ भी हो। तो जिस प्रकार से चलते 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 घोड़े रास्ते में थक जाया करते हैं, ऐसे ही सीता के पीछे दौड़ता दौड़ता मेरा मन भी थक रहा है। इधर मैं सुन रहा हूँ कि बानर सेना राम जी के साथ समुद्र के किनारे आ गई है। आओ, पृथ्वी के ऊपर तो ये बंदर लोग खूब घूमते ही हैं, पर इनको सागर पार करने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि सागर अक्षोभ्य है। सागर का पार करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। और ये राम और लक्ष्मण यदि ज्यादा कुछ सागर को लांघने में उत्साहित होंगे, सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु इनको खा जाएंगे। और देखो, एक बंदर यहाँ आया, उस बंदर ने यहाँ आकर के बड़ा उत्पात मचाया था, तो इससे ये भी मालूम देता है कि इन बंदरों को छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। और वैसे मुझे मनुष्यों से कोई भय लगता नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के पास इतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति देवताओं और असुरों के पास है। उन सबसे मैं ब्रह्मा के प्रदान से सुरक्षित हूँ। आप लोगों ने देवताओं के असुरों के संग्राम में सदा मेरी सहायता की है। अब आप लोग बताइए कि सुग्रीव के साथ होने वाले इस युद्ध में हमें क्या करना चाहिए। सुग्रीव के जो प्रमुख प्रमुख बानर है वो यदि यहाँ आ भी जाए, पहली बात तो आ नहीं सके, यदि आ भी जाए तो अपने को क्या करना चाहिए, क्योंकि सीता उनको मालूम तो हो ही गई कि लंका में है और सीता को प्राप्त करने के लिए सागर के किनारे आ ही गए हैं। किसी भी उपाय से वो मान लो यहाँ आ भी जाए, यद्यपि आ नहीं सकते, आ जाए तो क्या करना चाहिए। मेरे विचार में तो एक बात आती है, किसी भी शर्त पर सीता दी न जाए और राम और लक्ष्मण यहाँ आ जाए तो इनको सीधे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। और आप लोग तो फिर इसमें क्या निर्णय करते हैं वो जो है मैं मानूंगा, परंतु मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता है। इस शक्ति से तो आप भी परिचित हैं। माना कि सागर को वे तीर सागर के तीर से चल करके लंका में आ भी गए, सागरम बानरे तीर्त्वा निश्चयेन जयोमम, तब भी अंत में निश्चय रूप से मेरी ही विजय होगी, युद्ध भी हो जाएगा, जीत मेरी होगी। लेकिन जहां तक सीता का सवाल है, दूंगा नहीं, राम लक्ष्मण को मैं मारूंगा, ये तो है मेरा निर्णय। अब इस विषय में आप लोग सोच समझ के बताओ। उस समय में सबसे पहले वहां रावण के पास में बैठे हुए कुंभकर्ण जी थे। वो कुंभकर्ण जी अपने सभा में खड़े हो गए। सभा में खड़े होकर के कुंभकर्ण खूब बोलने लगे हो। कुंभकर्ण प्रचुर क्रोध है और कुंभकर्ण भी कैसे बोले, खूब क्रोध में आकर के डांट डांट करके बोलने लगे हो। कुंभकर्ण प्रचुर क्रोध है वचनम च इदम अब्रवीत। और कुंभकर्ण कैसे बोले तो वो तो आप जान ही रहे हो। इस बहुत क्रोधित होकर के कुंभकर्ण जी बोलने लगे, यदा तु रामस्य स लक्ष्मणस्य प्रसय्य सीता खलुसा इहाहृता सकृत् समीक्षैव सुनिश्चितम् तदा भजेत चित्तम् यमुनेव यामुनम्। हे राक्षसराज रावण, आप राम और लक्ष्मण की सीता को लेकर यहाँ जिस समय जाने यहाँ लाए उससे पहले आपने क्या मंत्रियों के साथ बैठकर कोई विचार विमर्श किया था? उस समय जब आपने कोई यहाँ हम लोगों से किसी से सलाह नहीं ली तो आज आपको सलाह लेने की क्या जरूरत हो गई? किसी भी काम को करना हो तो उस काम को पहले खूब अच्छी तरह से समझ करके करना चाहिए महाराज रावण, क्योंकि उस कार्य का अंत कैसा होगा वह उस कार्य को करने का उस कार्य के स्वरूप पर निर्भर करता है कि वो कार्य पापमय है या पुण्यमय है या धर्ममय है। आपने अपने चित्त के अंदर इस बात को तोला नहीं महाराज। हे महाराज, आपका बल आपसे बड़ा विलक्षण है ये हम मानते हैं, परंतु जो आज आप कर रहे हैं ये काम आपको पहले करना चाहिए था। हे महाराज, जो राजा न्याय से शासन करता है, राज्य का कार्य देखता है, वो आपके समान तपता नहीं है, संताप को प्राप्त नहीं होता जैसे आज आप संताप को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वे लोग एक निश्चित अर्थ के ऊपर पहुंचने के बाद उस निर्णय को पूरा करते हैं। जल्दबाजी में निर्णय करना और अपने मनचाहा निर्णय करना ये श्रेष्ठ राजाओं का काम नहीं, कीर्ति प्राप्त करने योग्य राजाओं का ये कार्य बिल्कुल नहीं है। जो कार्य हमारे उपाय के विरुद्ध हो या जिन कार्यों के उपाय को हम जानते ही न हो, वे कार्य तो दिखने में चाहे कितने ही अच्छे होते हों, परंतु वे कार्य तो बड़े मलिन होते हैं, जैसे दिखने के अंदर आभिचारी के यज्ञ बड़े अच्छे दिखते हैं, यज्ञ बहुत अच्छा दिखता है कि भाई अग्नि प्रज्वलित हो रही है, मंत्र डाला जा रहा है, यज्ञ बड़ा अच्छा है, परंतु कौन सा यज्ञ जो आभिचारी यज्ञ होता है वो अच्छा नहीं होता। माने किसी को मारने के लिए यज्ञ किया जाए, वो दिखने में तो यज्ञ अच्छा होता है लेकिन उद्देश्य क्या है, मारना है, ये अच्छा नहीं है। आप जो हमको बार बार सभा में राम का ये अवगुण बताते हो कि 14,000 सैनिकों को मारा इसलिए हमने सीता का हरण किया, ये बात आपकी सभा के अंदर ठहरने वाली नहीं है, क्योंकि राम ने उस समय में बाण से बात की थी। तो आप भी राम के सामने सेना लेकर जाते और हम सब आपके साथ चलते, राम को मारने के लिए आप चलते, हम चलते, सब चलते, 14,000 को मारा तो अपने कितने चलते साथ में, राम के साथ युद्ध करते, सीता के हरण का और 14,000 राक्षसों को मारने का कोई संबंध नहीं बैठता है। हे महाराज, जो कार्य बाद में करने चाहिए उन कार्यों को जो पहले ही कर देता है, और जो कार्य पहले करने चाहिए उन कार्यों को बाद में करता है, वो राजा नीति और अनीति दोनों को नहीं समझता है। जो व्यक्ति जो राजा चंचलता बस बात का कोई विशेष उसका तात्पर्य नहीं निकलता, वे राजा लोग जो है जिस समय में कोई काम करते हैं तो उनके कामों में अनेक प्रकार के छिद्र हो जाते हैं, जैसे क्रौंच पर्वत में छेद हो गए ऐसे उनके कार्यों में जो है छिद्र आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं। त्वयैवेदं महदारब्धम्, तुमने पहले ये काम ठीक ढंग से किया नहीं था, तुमने सोच करके सीता का हरण नहीं किया है। यदि आप सोच करके ऐसा काम करते तो राम के जहरीले बाणों से आपकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन आपकी मृत्यु राम के जहरीले बाणों से अवश्य होगी, इसको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन अब आप सभा में बैठ करके कोई निर्णय करने के लिए बोलते हैं, यदि आप किसी कार्य का आदेश देते हैं तो ठीक है, मैं भी आपके पक्ष में लड़ूंगा, यदि मैं उनको मार दूं तो मैं उनको मार दूंगा और वो मुझे मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा। आपके साथ मर मिटने के लिए तो तैयार है, परंतु आपके पाप के साथ में हम तैयार नहीं है। आप राजा हो, राजा के साथ हमको युद्ध करना चाहिए, हमारा धर्म है, परंतु राजा ने किस बात के लिए युद्ध छेड़ा है वो राजा जाने, राजा का काम जाने। हम आपके साथ युद्ध करेंगे, ये हमारा धर्म है, लेकिन हम आपकी सीता के हरण का समर्थन नहीं करेंगे, ये भी हमारा धर्म है। सीता के हरण का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। रावण, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, यदि युद्ध होता है तो मैं तैयार हूँ, अकेला सारी सेना का संहार कर दूंगा। बहुत से बानर मेरे चीखने से, मेरी गर्जना से नष्ट हो जाएंगे। बहुत से बानर मैं पर्वत शिखर लेकर के उन पर फेंक दूंगा, उससे नष्ट हो जाएंगे। बहुत से बानर मेरे घोटे के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। और भाई, पुनर्माम सद्वितीयेन शरेण निहनिष्यति ततो हम तस्य पाश्यामि रुधिरम कामम आश्वसय। और यदि राम ने मुझे बाण लगा दिया तो जो है, यदि वो राम मेरे बाण लगाएगा तो मैं भी क्या करूंगा कि उसके बाण से अपने को बचा करके सीधा उसके पास जाकर उसके छाती का खून पी जाऊंगा। इसलिए युद्ध तो मैं आपके पक्ष में करूंगा, युद्ध में आपके पक्ष में हूँ, लेकिन सीता हरण के विषय में आपके पक्ष में बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आपको जो काम करना है सो कीजिए, मेरा मत मैंने आपको बता दिया है। रावण कुंभकर्ण की बात सुनकर के एकदम नाराज हो गए। फिर रावण के पास में महापार्श्व थे, वे महापार्श्व देखे कि भाई रावण तो नाराज हो रहे हैं, तो वे थोड़ी देर सोच करके रावण के पास आकर हाथ जोड़ करके और बोलने लगे, महाराज आपको राम की सेना की, बांदरी सेना की इतनी डरने की क्या स्थिति पैदा हो गई? आखिर ये बंदर बंदर ही तो है, ये जंगलों में तो रहते हैं। बंदरों ने आज तक यदि कोई किसी प्रकार से युद्ध किया भी है तो वो बंदरों के साथ ही किया होगा, या कोई छोटे मोटे मक्खी मच्छरों के साथ युद्ध किया होगा, या कोई बिलों में रहने वाले जीव जंतुओं से युद्ध किया होगा। उन्होंने लंका के राक्षसों के साथ कभी युद्ध किया हो ऐसा कोई इतिहास बताता नहीं है। हे महाराज, न पिबेत मधु संप्राप्य स नरो बालिशो भवेत। कोई आदमी यदि जंगल में पहुंच जाए और वहां पर वो बढ़िया छत्ते का मधु और उसको न पिए तो वो वास्तव में मूर्ख कहा जाता है। इसी प्रकार से आपके पास यहाँ सीता आई हुई है, सीता के सामने गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? सीता को आप धमका के क्यों नहीं कह देते कि तुम चलो हमारे रानी वाले महल में रहो, वहाँ पर तुम हमारी रानी बनकर के रहो, हम तुमको अशोक वाटिका में नहीं रखेंगे, जंगल में नहीं रखेंगे, वहाँ रहो तुम हमारी रानी, धमका के आप क्यों नहीं बोल देते? कुंभकर्ण जैसा भाई आपके साथ और मेघनाथ जैसा पुत्र आपके साथ, हमारे जैसे सैनिक आपके साथ, फिर क्या बात है? एक बात तो याद आती है महाराज, क्या आप ऐसा करो कि इन बंदरों के पास में किसी न किसी प्रकार की एक कोई गुप्त चाल चलो, या तो इन बंदरों के बीच में जाकर कोई आपके गुप्त चल जाए, बंदरों को आपस में ही लड़ा दे। पहले तो सुग्रीव को आप खूब सा धन दे करके और सुग्रीव को राम को दोनों को अलग अलग करवा दो। ये सुग्रीव अपने सेना लेके चला जाएगा, फिर तो राम और लक्ष्मण दो ही बचेंगे, आपको तो कुछ करना नहीं पड़े, आप तो केवल उसके वहां पर धन पहुंचा दो, या शांति से आप कुछ न कुछ कोई उपाय करना हो सुग्रीव को वैसे समझा दो, या बंदरों के अंदर कोई भेद करवा दो। और यदि तीनों ही काम नहीं होते हो तो फिर अपना ये दंड वाला मार्ग है, फिर लड़ाई झगड़ा है ही। लड़ाई झगड़े हम तो ज्यादा अच्छी लगती है बात, क्योंकि जो आदमी बातों से नहीं मानते, जो आदमी बातों से नहीं मानते वे आदमी लातों से ही मानते हैं, इसलिए अपने लड़ाई करना ज्यादा अच्छा लगता है। महापार्श्व ने कही ये बात तो रावण ने कहा कि महापार्श्व तुम तो बड़ी अच्छी बात बोलते हो, लेकिन देखो क्या बताऊं, तुमने कहा कि सीता को तुम बलपूर्वक यहाँ लाकर रानी क्यों नहीं बनाते, तो ये मुझे एक शाप मिला हुआ है। एक पुंजिकस थला नाम की अप्सरा थी, वो पितामह ब्रह्मा के लोक में जा रही थी, वो बीच में मुझे मिल गई और उस स्त्री को मैंने अपना मान लिया और वो उसका ब्रह्म भवन में विलंब से पहुंचना हुआ, तब वो वहाँ ब्रह्मा जी के पास में जाकर बुरी तरह से रोने लगी और मेरे कुकृत्यों का मेरे पाप का वर्णन करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया कि देखो आज के बाद किसी भी स्त्री को यदि बलपूर्वक तुमने अपना बनाने का काम किया तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस कारण से मैं सीता से हरदम डरता रहता हूँ। देखो सीता को भी मैं लेके आया हूँ तो डरते डरते लाया हूँ। जिस समय सीता को लाया हूँ उस समय में सीता की रक्षा हो इस दृष्टि से लाया हूँ, परंतु सीता को मैं कुदृष्टि से देखूं और सीता मेरे हाथ में रहे ऐसा संभव नहीं है, नहीं तो मेरे सिर के टुकड़े हो जाते। यहाँ लाने के बाद अब मैं सीता को मनाने का प्रयास जरूर करता हूँ। तो देखो नारोहे बलात् सीताम, सीता को बलपूर्वक ला नहीं सकता हूँ। सागर से वो मे गए, देखो मेरा बल सागर के समान अक्षुभ्य है, वायु के समान अनवरुद्ध है। इस बात को राम जानता नहीं है, अतः वो राम मुझसे युद्ध करने के लिए समुद्र के किनारे आया हुआ है। ओहो वो ये नहीं जानता है कि ये रावण कौन है कि जो गुफा में सोए हुए सिंह के समान है, ये रावण कौन है कि जो क्रुद्ध हुई मृत्यु के समान है। मेरे निकले हुए बाणों पे राम सह नहीं सकेगा, मेरे बाणों से इसके धनुष टूट जाएंगे, इसकी छाती विदीर्ण हो जाएगी। परंतु ये राम अभी तक इस बात को समझता नहीं, मुझसे युद्ध करने के लिए सोचा है। अरे हजारों नेत्र वाला इंद्र भी मेरे सामने युद्ध नहीं कर सकता, वरुण भी मेरे सामने युद्ध नहीं कर सकता। क्या क्या सामर्थ्य है रावण की जो मेरे से युद्ध करेगा? क्या सामर्थ्य है राम की जो मेरे से युद्ध करेगा? उस राम को कौन बताए कि कुबेर को भी मैंने परास्त किया है और मेरे कैलाश शिखर को अपने भुजाओं में लिया है? कौन समझाए, कौन कहे? परंतु ये कहने की बात नहीं है, समय आएगा तब स्वयं ही उसको पता चल जाएगा कि हमने राम के रावण के साथ युद्ध करके बड़ा भारी अनिति का काम किया है। रावण के वचनों को सुना, कुंभकर्ण के वचनों को सुना, सबके वचनों को सुनने के बाद अब रावण के छोटे भाई विभीषण जी महाराज उन्होंने खड़े होकर के बड़ी सभा में बड़े अर्थ के शब्द कहे, सार्थक शब्द कहे और उन्होंने बताया कि महाराज आप मेरे निवेदन को बड़े प्रेम से सुनिए। आप देखिए कि सीता रूपी एक सांप है जिसको आपने गले में डाल लिया है। सीता का जो शरीर है ये सांप जैसा शरीर है, जैसे सांप का शरीर बहुत कोमल होता है और चितकबर जो है बहुत अच्छा होता है। सांप के ऊपर कई रंग बड़े अच्छे लगते हैं, दिखने में बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे ही सीता का तुमने बाहरी स्वरूप देखा है, बाहरी स्वरूप तो सांप का भी बड़ा अच्छा होता है, परंतु आपने ये नहीं देखा कि सीता के अंदर जहर है। वो जहर है, सीता के मन में जो चिंता है वो चिंता ही जहर है। तुम सीता के चेहरे पर मुग्ध होते हो, इस चेहरे के अंदर जो दांत है ये दांत सांप के दांत है ये समझो। और सीता की जो पांच अंगुलियां हैं ये पांच उंगली पांच फण है, इसलिए सीता से दूर रहना, ये सीता रूपी सर्प तुमको खा जाएगा। याद रखो, देखो रावण जब तक ये बंदर लोग जो कि बड़े बड़े पर्वत के समान है लंका के अंदर नहीं घुसते हैं, जिनके दांत वज्र के समान कठोर और नख भी वज्र के समान कठोर, ये जब तक लंका में नहीं घुसते हैं प्रदीयताम दास रथा ये मैथिली, तो उससे पहले पहले आप सीता को राम के पास सुपुर्द समर्पित कर दीजिए। जब तक राम के द्वारा छोड़े हुए बाण लंका में नहीं आते हैं, जब तक राम के बाण राक्षसों के छाती में नहीं जाते हैं, जो बाण वज्र के समान बड़े कठोर है, उससे पहले पहले चुपचाप आप राम से संधि करके सीता राम को लौटा दीजिए। महाराज जिस प्रकार से गहरी नींद में आपके साथ कोई नहीं रहता, जैसे महाराज आपकी बीमारी के अंदर केवल आपको ही बीमारी भोगनी पड़ती है, उस समय कोई आपके साथ नहीं रहता, इसी प्रकार से कुंभकर्ण आपके साथ नहीं रहेगा, मेघनाद आपके साथ नहीं रहेंगे, बड़ी बड़ी बात बनाने वाले महोदर महापार्श्व प्रहस्त ये कोई आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग अपनी शक्ति की सीमा तक ही आपका साथ देख सकते हैं, उसके आगे जाएं की शक्ति नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। कुंभकर्ण का पुत्र निकुंभ है ये और अतिकाय वगैरह ये भी महाराज आपकी सहायता नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप जो है सीता को राम के सुपुर्द कर दीजिए। आप ये निश्चित मानिए कि आप जीते 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 राम के बाणों से पिंड नहीं छुड़ा पाएंगे। आप ये सोचते होंगे कि मेरे पास भी कई शस्त्र, मैं शस्त्र चलाकर राम को वश में कर लूंगा, ये भावना आप मन से निकाल दीजिए। आपको खूब अच्छी तरह से विचार करना चाहिए कि जिसका एक वानर यहाँ आकर के इतना बड़ा काम कर गया, उसका स्वामी कितना बड़ा काम कर सकता है। आप ये मत समझना कि इंद्र के पास चला जाऊंगा तो मेरी रक्षा होगी, मृत्यु के पास चला जाऊंगा तो रक्षा होगी, आकाश में छिप जाऊंगा, पाताल में छिप जाऊंगा और राम को मैं ठग लूंगा, ये बात नहीं, आप स्वयं ठगे जाएंगे। इतना कहकर के विभीषण जी चुप हुए तो वहां प्रहस्त खड़े होकर कहने लगे, हे महाराज, विभीषण की बातों से आपका चेहरा उतरने क्यों लगा है? क्या आपको देवताओं पर की हुई विजय याद नहीं आती? उन देवताओं के पास कैसी शक्ति थी और हम रात दिन उनसे जूझते थे, देवताओं के समान तो ये बानर नहीं है ना, ये राजकुमार राम और लक्ष्मण नहीं है ना। आप जब देवताओं से नहीं डरते, जब आप दानवों से नहीं डरते, यक्ष किन्नर गंधर्व महोरग इनसे आप नहीं डरते, राम से आप डरेंगे, राजकुमार से आप डरेंगे? नहीं महाराज, आप छोटे राजा विभीषण के कहने में आकर अपने मन में किसी प्रकार का भय मत लाइए। प्रहस्त ने जब अपनी बात कही तो विभीषण जी महाराज ने रावण के हित की आकांक्षा से फिर बड़े सावधानी के साथ बड़े कीमती शब्द धर्म अर्थ और काम को बढ़ाने वाले, देखो यहाँ काम का अर्थ यह है कि धर्म अर्थ काम का अपना जो औचित्य होता है, बलम बलवतां चाम काम राग विवर्जितम, और उधर भगवान कहते हैं कि काम मेरा स्वरूप है। वो काम क्या है? काम माने स्वाभाविक जो शरीर की भूख प्यास आदि की इच्छा होती है, पवित्र इच्छा होती है, वो काम होती है। अपवित्र इच्छा ये काम के ये जो काम है उसके लिए धर्म अर्थ काम नहीं है। पवित्र इच्छा इतनी है वो कि भूख लगे भोजन कर लिया, प्यास लगे जल पी लिया, ठंड लगे कपड़ा पहन लिया, और जो है शरीर का निर्वाह हो बस वो है काम। शरीर के निर्वाह की इच्छा है अर्थात प्राणों की जो इच्छा है, सीधी बात छोड़ो ना, प्राणों की जो इच्छा है वो धर्म अर्थ काम वाला काम है। और अपने प्राण धारण जिसके बिना प्राण न रह सके उन चीजों की इच्छा है काम, वो है धर्म अर्थ काम, मोक्ष का पुरुषार्थ रूप काम। और ये भी चाहिए, धन भी चाहिए, और जो है पदार्थ भी चाहिए, यश भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए, कुटुंब भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, और प्रतिष्ठा भी चाहिए, ये बाल फालतू की जो इच्छा है ये सब होते हैं मलिन काम। तो विभीषण जी महाराज के वचन कैसे थे कि धर्मार्थ काम निविष्ट बुद्धि, उनकी बुद्धि सब जगह ठीक प्रवेश करने वाली थी। अब विभीषण जी ने और ढंग से समझाते हुए कहा, हे सेनापति प्रहस्त, आप महाराज को किस प्रकार से बरगला रहे हो? महोदर और कुंभकर्ण जी, जो आप मैं बात बोलता हूं उन बात को आप काट नहीं सकते हो। आपने भूतकाल की विजय को तो यहां बार बार बखान किया है, लेकिन वर्तमान में आप जो पाप करके और विजयी होना चाहते हो इसका कोई उपाय नहीं बताया। भूतकाल की विजय है वो आपकी, जो आप तपस्या करते ही विजय प्राप्त किए थे। ब्रवीत रामम प्रतितन्न शक्यम यथा गति स्वर्गम अधर्म बुद्धे। जिस प्रकार से पापी व्यक्ति स्वर्ग के पास नहीं जा सकता, उसी प्रकार से आप लोगों में कोई सामर्थ्य है जो राम के पास सीधे जाकर कोई बात करो। तुम सीधा बोल देते हो यहाँ बैठे बैठे कि हम राम को मार देंगे, पर राम के सामने जाकर उसके आंख से आंख को मिलाओ कि राम तुम्हारे सामने किस प्रकार से, तुम राम के सामने कैसे हो। प्रहस तुम सारे राक्षस मिल जाओ, हम तुम सब मिल जाओ, तो भी किसी प्रकार से उस राम का कोई मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। जिस प्रकार से नौका के बिना कोई सागर को नहीं पार कर सकता, उसी प्रकार से सद्बुद्धि के बिना, सही निर्णय के बिना और उचित विचार के बिना आप लोग भी जो है राम के क्रोध रूपी सागर को पार नहीं कर सकते। महाराज राम के अंदर में धर्म को देखता हूँ, महाराज राम के अंदर जो शक्ति है वो धर्म की शक्ति है। रावण तुम तो बाण दिखाते हो, बाण कौन देखेगा, ये शक्ति तो कायरों की शक्ति होती है, धर्म की शक्ति वो सूरवीरों की होती है। पुरोस्य देवास्य तथा विदस्य कृत्येषु शक्तस्य भवन्ति मूढ़ा। उसके सामने देवता वगैरह कोई टिक ही नहीं सकते हैं। आप लोग व्यर्थ में अपनी मूर्खता बता रहे हो कि हम राम को मार देंगे। देखो राम के तीखे बाण और जहरीले बाण शरीर में प्रवेश करने के बाद आप लोग कैसे कहोगे कि राम बड़ा बलवान है, इसे तो युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बाण अंदर प्रवेश किए होंगे, आप मर जाओगे, फिर बोलेगा कौन। प्रहस्त ये तो बात आज सोचने की है, राम के साथ हम युद्ध करेंगे, युद्ध करने के बाद जब राम के बाण लग जाएंगे फिर कौन बोलेगा, उसमें तुम्हारी बोली काम ही नहीं करेगी। आज बोलने का काम है, आज बोलो। और राम का बाण तुम्हारे छाती में प्रवेश करेंगे और छाती में प्रवेश करके तुम्हारा प्राणांत ले लेंगे, तो बताओ फिर तुम क्या तुम्हारी स्थिति रहेगी। ये रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे इसका बेटा निकुंभ हो, और चाहे मेघनाद हो, चाहे आपके पास में कितने ही मायावी राक्षस हो, आप लोग किसी प्रकार से राम से युद्ध नहीं कर सकते। भले ही आप इंद्र के साथ युद्ध कर सकते हो, देवान तक, नारायण तक, अतिकाय, अतिरथ, अकंपन, ये बड़े बड़े आपके महारथी आप बता रहे हो, ये राम के सामने ठहर नहीं पाएंगे। जो राजा व्यसनी होता है, जो राजा पापात्मा होता है, उस राजा के शक्ति के पीछे तो पाप ही रहा ना। अब वो पाप की शक्ति कितनी होगी जो धर्म को खत्म कर देगी, ऐसा कैसे संभव है। आपके जो बाण है उसके पीछे पाप की शक्ति, राम के बाण के पीछे धर्म की शक्ति, तो वो धार्मिक बाण होगा, ये आपका पापात्मक बाण होगा। अब पाप का बाण कितना चलेगा धर्म के बाण के सामने, तो आप इन बाणों का बाह्य रूप नहीं अंतरंग रूप देखेंगे। राम के बाण जिस समय में छोड़े जाएंगे तो राक्षसों का विनाश हो जाएगा। राम के बाण तो भाई जो है नाग के समान है, नाग यदि फुंकार करे तो उसका मुकाबला कौन करे, हजार फण वाला सांप आ जाए तो कोई नहीं ठहरता, तो कैसे राम के सामने आप लोग ठहरोगे। हम लोग तो आपको एक बात कहते हैं मंत्रियों कि यदि अपना राजा हमारा अपने अनुकूल हो और हम यदि राजा के परम हितेशी हो, तो राजा यदि कहीं खड्डे में पड़ता हो तो राजा का कपड़ा पकड़ के भी खींच ले, चोटी पकड़ के भी खींच, अरे आप खड्डे में पड़ जाओगे, खड्डे में पड़ जाओगे। एक कथा आती, सेठ जी एक कथा बोलते थे, थोड़ी अटपटी सी की याद है। कहते थे कि एक बेचारा कोई पंडित जी था, पंडित जी कुछ पढ़ा लिखा कुछ नहीं, पैसा भी उसके पास कुछ नहीं, घर का खर्चा नहीं चले। पंडिता ने कहा कि देखो इस गांव में बहुत ब्राह्मण रहते हैं, सबका घर का गुजारा चलता है, कोई मांग के कोई कैसे अपना सब गुजारा करते हैं, तो आप जो है थोड़ा कहीं यायावर वृत्ति से, याचना वृत्ति से, कहा याचना वृत्ति तो मेरे से नहीं होती, तो पढ़े लिखे आप हो नहीं, तो कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो वो पंडित जी चले गए, पतड़ा लेकर के खाख में दबा करके जंगल में चले गए। जंगल में जाकर एक टूटी फूटी कोई झोपड़ी थी उसमें बैठ गए। वहां पर क्या हुआ, घूमते घूमते एक जो है एक आ गया, कोई गधा चराने वाला था कोई, तो वो आया तो उसने कहा कि महाराज मेरा गधा घूम गया। तो वही गधा घूम गया तो पतड़ा देख के बताऊंगा। अब वो पतड़ा तो उनको खोलना ही नहीं, कैसे उल्टा लेके बैठ गया, उल्टा लेकर के और कहा कि देखो तुम जो है उसको कुछ बताया, ऐसा कुछ करो तुम घड़क घड़क जो है गधा मिल जाएगा। भाग दतुरा के दतुरा घोट के पिला दो, तू दतुरा घोट के पी ले, तू दतुरा घोट करके और पी ले और फिर जो है तू तेरे गधे को ढूंढ मिल जाएगा। तब उसने कहा ठीक है, वो दतुरा घोटा, दतुरा घोट करके उसको पी कर, अब दतुरा पीट नींद आवे नहीं, रात भर इधर उधर चिल्लाता 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 फिरता रहा जंगल में और उसको अपना गधा मिल गया। अब उसको गधा मिल गया तो साहब अब जो है वो बड़ा राजी हुआ और उसने उसको एक रुपया भेंट कर दिया। अब एक रुपया उस जमाने में पंडित जी आए अपने घर पर, देखो आज एक रुपया मिला है तो यही तो कहती हूँ आप कुछ करोगे तो मिलेगा। अब ऐसे वो पंडित जी जो है दूसरे दिन जा रहे थे, वही आदमी मिल गया बाजार में, बाजार में मिल गया और वो एक रुपया लेकर के